नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर बल देते हुए लोगों से दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया। चिप्स से लेकर शिप्स तक सभी क्षेत्रों में भारत में निर्मित उत्पादों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की। कहा, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय भारत की प्राचीन परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मोरक्को की यात्रा पर रवाना होंगे। वे अफ्रीका के पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण बर्शीद में करेंगे। अमरीका ने स्पष्ट किया, नए H-1B वीजा का $1,00,000 का एकमुश्त शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर फोर में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर बल देते हुए कहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन विदेशों पर उसकी निर्भरता है और देश को इससे बाहर निकलना होगा। कल गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर शिप्स तक सभी क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन के महत्व का उल्लेख किया।
देश के विकास के संकल्प को हम दूसरों की निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते, हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसके लिए हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जाना होगा।
भारत को एक समुद्री महाशक्ति बनाने के अपनी सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि एक क्षेत्र जल्द ही एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया को अपनाएगा, जिसका उद्देश्य पूरे देश में बंदरगाह प्रक्रिया को सरल बनाना है।
भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए 3 और बड़ी स्कीम्स पर भारत सरकार काम कर रही है। इन 3 योजनाओं से शिप बिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी, हमारे शिपयार्ड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद होगी और डिजाइन और क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। इन पर आने वाले वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कल 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की कई बड़ी समुद्री परियोजनाओं के साथ साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के पास प्राचीन शहर लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की। NMHC का विकास 4,500 करोड़ रुपए की लागत से उस ऐतिहासिक स्थल पर किया जा रहा है जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। श्री मोदी ने कहा कि पूरा होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय होगा और भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को प्रदर्शित करेगा तथा पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में भी काम करेगा। प्रधानमंत्री ने धौलेरा स्मार्ट सिटी का भी हवाई सर्वेक्षण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले साल मार्च तक देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि सरकार के प्रयासों से पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित 3 प्रमुख क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में 75% की कमी आई है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से भी कम समय में सरकार ने करीब 60 करोड़ लोगों को कई सुविधाएं प्रदान की हैं।
11 साल के कम समय के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, गैस, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को प्रतिमाह और 5 लाख तक दवाइयों की हॉस्पिटल की सुविधाएं दी थी, जिसके लिए 60 करोड़ लोग लगभग 7 दशक से राह देखते थे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
ये किसी रक्षा मंत्री की मोरक्को की पहली यात्रा होगी जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान रक्षा रणनीतिक और उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए वे मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ लाउदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे बर्शीद में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स मोरक्को के व्हील्स आर्म्ड प्लेटफॉर्म के नए विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। ये संयंत्र अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत देश के रक्षा उद्योग के बढ़ते वैश्विक प्रभाव में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्री रियाद मेजूर से वार्ता करेंगे। वे रबात में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल व्यापार वार्ता के लिए कल अमरीका जाएगा। यात्रा का उद्देश्य भारत और अमरीका के बीच व्यापार बातचीत को आगे बढ़ाना और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को अंतिम रूप देना है। अमरीका ने नई H-1B वीजा नीति में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि नई नीति में $1,00,000 का शुल्क केवल नए आवेदकों पर लगाया जाएगा और ये एकमुश्त भुगतान होगा। इस नीति को लेकर प्रौद्योगिकी उद्योग में भ्रम और चिंता की स्थिति बन गई थी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जिन लोगों के पास पहले से ही H-1B वीजा है और वर्तमान में देश से बाहर हैं, उनसे दोबारा प्रवेश के लिए $1,00,000 का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका नवीनीकरण या वर्तमान वीजा धारकों पद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले भारत ने कहा था कि वो H-1B वीजा पर अमेरिका के फैसले के प्रभावों की जांच कर रहा है, लेकिन इस कदम के मानवीय परिणाम भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्ष अमेरिका के H-1B वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों के पूर्ण प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। उपभोक्ता मामले विभाग ने अगली पीढ़ी के GST सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर GST शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। कल से प्रभावी संशोधित GST दरों और छूट के कार्यान्वयन के बाद उपभोक्ताओं की अपेक्षित पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ई कॉमर्स, फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तुएं जैसी शिकायतें दर्ज की जाएंगी। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम करने और कर ढांचे को सरल बनाने के लिए देश में अगली पीढ़ी के GST सुधारों की घोषणा की थी। नई दरें कल से लागू हो रही हैं। आज हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर इन सुधारों के संभावित प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं।
सरकार ने GST सुधारों के अंतर्गत वाहनों की खरीद पर उल्लेखनीय कमी कर लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। दोपहिया वाहन और छोटे कारों पर कर की दरों को 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। बड़ी कारों पर भी अब अतिरिक्त कर को पूरी तरह से हटाकर GST को 40% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से बड़ी कारों पर लगने वाली प्रभावी कर कम हो जाएगी, जिससे लोगों के लिए कारें खरीदना पहले से अधिक किफायती हो जाएगा और ऑटो सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। GST में कटौती से पुराने वाहनों को नई वाहनों से बदलने में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत स्वच्छ परिवहन की तरफ अग्रसर होगा। GST कर में सुधार पर अपनी राय जाहिर करते हुए एक कार खरीददार सैयद ने सरकार के फैसले का स्वागत किया।
गाड़ियों पे लेस देन 300 cc का जो भी है, गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस किया है 28% से 18% को। सो ये 10% का डिफरेंट, इट इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। तो ये डेफिनेटली अगर किसी को ये करेगा, इम्पैक्ट करेगा, तो वो मिडिल क्लास फैमिली रहेगी, बिकॉज 10% टैक्स बचना, इट्स लाइक अ ह्यूज डिफरेंस।
नई GST दरों से वाहनों की कीमतें कम होंगी। युवाओं के साथ ही निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अब वाहन खरीदना और भी आसान हो जाएगा। सौम्या शरण के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनसेवा सुशासन की भावना से सरकार बदलाव और प्रगति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार ने किस तरह से कर राहत और सुनिश्चित पेंशन प्रदान किया है।
पिछले 11 वर्षों में सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए आगे बढ़कर काम किया है। आयकर दर को कम करने से लेकर रिटर्न सरल बनाने तक हर कदम नागरिकों को उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा अपने पास रखने देने के मूल विचार से जुड़ा रहा है। हाल के कर सुधार इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय विकास के एक स्तंभ के रूप में मध्यम वर्ग पर भरोसा जताया है। एक और बड़ा फैसला ये था कि सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को पूंजीगत लाभ ऐसी विशेष आय को छोड़कर कोई आयकर नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा था कि सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कर राहत सुनिश्चित कर रही है।
एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली।
आयकर रिटर्न भरना आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब पहले से भरे हुए रिटर्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी थी। ये योजना सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन सुनिश्चित करती है, जो कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर फोर के दूसरे मुकाबले में आज रात 8 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत ने ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान पर 7 विकेट से जीत हासिल की थी। बैडमिंटन में सात्विक साराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के डबल फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त किम वो हो और सियो सिंह जे से खेलेगी। कल सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता मलेशिया के आरुण चिया और सो वोहिक को हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। वस्तु और सेवा कर GST की नई दरों के कल से लागू होने को अमर उजाला ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, कंपनियों का दाम घटाने का सिलसिला जारी। पत्र को लगता है सोमवार से शुरू होने वाली त्योहारी सीजन में बाजारों में काफी रौनक रहने वाली है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना ने कल हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि, शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है, बुलेट ट्रेन की रफ्तार का रास्ता साफ, पूरी हुई 5 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई। सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा दैनिक जागरण सहित लगभग सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है, 4 दशक से भी ज्यादा के करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाले मोहनलाल सहज अभिनय और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ साथ निर्देशक और निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। 26 सितंबर को वायुसेना को अलविदा बोलेगा MiG-21 विमान। देशबंधु ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है, 6 दशक से भी लंबे समय तक भारत की हवाई सीमाओं के प्रहरी रहे MiG-21 शौर्य और पराक्रम की लंबी विरासत छोड़ जाएगा। कल से शुरू हो रहे नवरात्रों पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, त्योहारों का जश्न शुरू, सज गई गलियां और चौपालें।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर बल देते हुए लोगों से दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया। चिप्स से लेकर शिप्स तक सभी क्षेत्रों में भारत में निर्मित उत्पादों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मोरक्को की यात्रा पर रवाना होंगे। वे बर्शीद में अफ्रीका के पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। अमरीका ने स्पष्ट किया, नए H-1B वीजा का $1,00,000 का एक मुश्ल केवल नए आवेदकों पर लागू होगा। और दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर फोर में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।